शांति। आज हमारे बीच आदरणीय दीपा दीदी उपस्थित हैं। आप सभी इनसे परिचित हैं। जो आज का विषय है संबंधों का प्रबंधन, इसी विषय पर प्रकाश डालने हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आदरणीय दीपा दीदी।
ओम शांति। कल से लेके आप सभी यहाँ शांति वन में इस विशेष कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। आज सुबह से लेकर राजयोग शिविर में भी आपने स्वयं का परिचय प्राप्त किया। उसके बाद हमारे आदरणीय गिरीश भाई और आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई से भी बहुत अच्छी बातें, मूल्यों के आधार से कैसे व्यापार करना है, आध्यात्मिकता का व्यापार में समावेश कैसे किया जाता है, उस पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी। और साथ में कल से लेकर ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ की आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुशी हो रही है। तो जो आपको यहाँ महसूस हो रहा है वो इन तीन दिनों में तो जरूर महसूस होगा, और भी ये खुशी बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसी खुशी, ऐसा अंतर का आनंद जो है वो सदा काल हमें अनुभव करना है, या तीन दिन के बाद फिर से जब हम कारोबार में जाएं, परिवार में जाएं, समाज में फिर से हमारा आदान प्रदान हो, तो ऐसी ही खुशी आपको वहां भी अनुभव करना है? आपकी इच्छा क्या है? सदा मिले ना? जैसे यहाँ हम इतने मधुरता से आपस में मिल रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, लेकिन आपको बहुत सारे नए नए मित्र मिल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है? नए नए लोगों से मिल रहे हैं जो आपके ही इस व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे आपके स्थान से आए हुए हैं, चाहे अनेक स्थानों से आए हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है कि हमें आत्मिक उन्नति के लिए ये दो तीन दिन यहाँ कार्यक्रम अटेंड करना है, सुनना है, समझना है, जीवन में धारण करना है। तो इसलिए ये एक ही लक्ष्य से आप सभी आपस में जब मिलते हैं, भोजन के स्थान पर भी बैठते हैं, प्रोग्राम के बाद में भी थोड़ा एक दूसरे से मिलना होता है, जहाँ जिस स्थान पर आप रुके हुए हैं वहाँ भी आपस में जो बाजू में रह रहे हैं या रूम में रह रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है, होती है, नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं आपको, नए लोगों से भी बातचीत हो रही है, हाँ या ना? हाँ, अच्छा। तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है नए मित्रों से बातचीत करते हैं? और यहाँ कौन सी बातें आप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो टॉपिक्स आप सुन रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य से आप आए हैं, कैसे आपको यहाँ इस संस्था के बारे में पता पड़ा, क्या आपको अनुभव हो रहा है, वही बातों की लेन देन कर रहे हैं ना? तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आपके संबंध जो यहाँ एक दूसरे के साथ मधुरता में महसूस कर रहे हैं, ऐसे संबंध सदा हम महसूस करें, चाहे हम अपने परिवार में रहें, चाहे हम अपने कारोबार में रहें, चाहे समाज में, तो हमारे सदा के लिए संबंध ऐसे स्नेह के, मधुरता के और आपसी लेन देन के, शेयरिंग के हो जाएं, ये लक्ष्य तो जरूर हमारा होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि संबंध जो है वो नेचुरल हमारे हरेक जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, विशेष करके बिजनेस और व्यापार में, तो उसकी बहुत सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। नहीं, खास करके कल जैसे गीता दीदी बता रहे थे कि व्यापारी को तो बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, और उसके लिए कोई भी व्यापारी हो या कोई भी उद्योग में किसी पद पर काम करने वाला व्यक्ति हो, जो भी उसकी जिम्मेवारी है उसको पूर्ण करने के लिए वो कितना भी उसके पास क्षमता हो, कितना भी उसके पास अनुभव हो, शिक्षा हो, क्या एक व्यक्ति कोई जिम्मेवारी पूर्ण कर सकता है? क्या एक व्यक्ति कोई भी टारगेट हो या गोल हो उसको अचीव कर सकता है व्यापार या बिजनेस में? कर सकता है? इंडिविजुअली आप कर सकते? व्यापारी को भी अगर लक्ष्य है कि मुझे इतना बिजनेस करना है, इतनी कमाई करना है, तो अकेले आप कर सकते? आपको सहयोगियों का सहयोग चाहिए? साथियों का सहयोग चाहिए, और अगर आप कंपनी में भी हैं कोई उच्च पद पर, तो जितना आपको ऊंचा पद हो और ऊंचा टारगेट मिलता है, तो उसके रूप से आपको अपना टीम चाहिए ना, संगठन चाहिए ना, तो सहयोग लेना ये आवश्यक हो जाता है। तो संबंध हमारे जिस आधार से होंगे, उस आधार से हमारे जीवन में, परिवार में या अपने कारोबार में हमें सहयोग प्राप्त होगा। आज मनुष्य का जीवन ऐसा है कि कोई भी कार्य वो करे, उसमें उसको सहयोग की आवश्यकता जरूर है, चाहिए। इस शरीर में भी अगर हम देखें तो सहयोग है, इस शरीर में भी हर एक जो हमारा अंग है वो आपस में सहयोग से चल रहा है, इसलिए हम ये शरीर को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। एक भी शरीर का अंग अगर ठीक नहीं चले तो क्या हो जाएगा, थोड़ा भी हमारे पैर में कोई तकलीफ हो या शरीर का अंदर का कोई अंग हो, नहीं कोई की किडनी ठीक नहीं चल रही हो, तो क्या होगा, बीमारी का स्वरूप हो जाता है। हर एक अंग को भी सहयोग से चलना आवश्यक है। इसी रूप से हम देखते हैं जहाँ भी हमारे संबंध हो, चाहे परिवार है चाहे कारोबार है, आपसी सहयोग बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि हम हमेशा लक्ष्य रखते हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारे संबंध और बेहतर बनते जाएं, ताकि हर एक का सहयोग हमें प्राप्त हो, ताकि जो लक्ष्य हमारे पास है, हमने अपने परिवार में भी जो लक्ष्य रखा है और साथ में अपने कारोबार के लिए लक्ष्य रखा है, उसको हम पूर्ण करें। लेकिन सभी का हमें सहयोग प्राप्त हो और हम जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको हम सफलता से पूर्ण कर सकें, उसके लिए किसकी आवश्यकता है, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसको देना आवश्यक है। हम देखते हैं जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में ये तीनों बातें सामने आ जाती हैं, नहीं? एक तो है हमारा परिवार, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कारोबार, और तीसरा है हम स्वयं। तो जब हम कोई भी लक्ष्य के दिशा में चल रहे हैं और सबका सहयोग प्राप्त करके हमें सफल होना है, तो हमें कहाँ अपने मन बुद्धि को केंद्रित करना है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन है, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा, कौन होगा, स्वयं, पक्का? क्यों स्वयं महत्वपूर्ण क्यों है? कारोबार चलाने वाले हम स्वयं हैं, और स्वयं क्यों महत्वपूर्ण है जी? तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से अगर हम कहें सबसे ज्यादा हमें मन बुद्धि को केंद्रित करना हो, जिससे तीनों का संतुलन हम प्राप्त कर सकें, तीनों में हमें सहयोग प्राप्त हो सके, वो कहाँ हमें मन को केंद्रित करना आवश्यक है। हम देखते हैं कि आज हमने सबसे ज्यादा अपने मन बुद्धि को केंद्रित कहाँ किया है, व्यापार और उद्योग में किया है। सबसे इम्पोर्टेंट हम किसको समझते हैं, बिजनेस को, बिजनेस को समझते हैं, यस तो कहेंगे ना, यस तो कहेंगे ना, दोपहर का समय थोड़ा रेस्ट तो ले लिया है ना, चाय भी ले ली है ना, तो हाँ तो कह सकते हैं ना, अच्छा सिर तो हिलाना, अगर हाँ ना भी कहो तो सिर हिलाना। तो हम देखते हैं कि हम अपने व्यापार को सबसे महत्वपूर्ण देते हैं समय, नहीं? आपको कई बार मेडिटेशन के कई कार्यक्रम के लिए सेंटर पर बुलाया जाता है, कहाँ कोई और आध्यात्मिक कार्य के लिए आपको निमंत्रण मिलता है, यहाँ पहुँचने के पहले कई बार आपको यहाँ का भी निमंत्रण मिला होगा, नहीं? लेकिन आपने कहा कि जरूर हमारी इच्छा जरूर है, नहीं बहन जी, हमारी इच्छा जरूर है, लेकिन क्या नहीं है, समय नहीं है। तो किसको महत्व दिया हमने, समय किसके लिए निकलता है, जिसको महत्व दिया जाता है वहां समय निकलता है। तो आज तक हमने ज्यादा महत्व किसको दिया था, अपने कारोबार को, या दूसरा फिर हम देखते हैं अपने परिवार को। हम कहते हैं कि कोई ना कोई आवश्यकता है परिवार में, कोई जिम्मेवारी है, वहां हमें रहना पड़ता है, इसलिए हम ये समय नहीं दे सकते। इच्छा जरूर है हमारी आत्म उन्नति करने के लिए, अपने मन को सकारात्मक चिंतन के लिए, मेडिटेशन सीखने की इच्छा जरूर है, लेकिन टाइम नहीं है। तो हमने सबसे कम प्रायोरिटी किसको दिया आज तक, किसको सबसे कम प्रायोरिटी दिया? स्वयं को। एक छोटी सी कहानी है, आपको शायद याद भी होगी और आपने सुनी भी होगी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी। मुझे ये कहानी बहुत प्रिय है क्योंकि ये इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। और ये कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा रास्ते में स्ट्रीट था, वहाँ स्ट्रीट लाइट, रात का समय था तो स्ट्रीट लाइट चल रही थी, और रास्ते के बीच ये छोटा सा बच्चा कुछ ढूंढ रहा था और उसके आसपास और दो तीन लोग भी थे जो ढूंढ रहे थे, शायद बच्चे को मदद कर रहे थे। तो वहां से ये व्यक्ति गुजर रहा था, उसने देखा छोटा सा बच्चा ढूंढ रहा है, उसके साथ में दूसरे लोग भी हैं ढूंढ रहे हैं, तो उसका भी मन हुआ कि उनको मदद करें। तो उसने पूछा किसी को कि क्या ढूंढ रहे हैं, तो कहा कि ये बच्चे की जो चाबी है ना वो गुम हो गई है, तो हम बच्चे को मदद कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति भी ढूंढने लगा, थोड़े समय के बाद उसको लगा यहाँ चाबी तो दिखाई नहीं देती है, तो चलो बच्चे को पूछ लें कि चाबी कहाँ गुम हुई है। तो बच्चे को पूछा, बेटा कि चाबी आपने कहाँ गुम हुई है? बोला, अंकल चाबी तो क्या है ना, मेरे घर के पिछाड़ी में गुम हुई। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाबी गुम तो वहां घर के पिछाड़ी में हुई और यहाँ सब लोग बैठकर क्यों ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या करूं अंकल, वहां बहुत अंधेरा है लेकिन यहाँ लाइट है, स्ट्रीट लाइट चल रही थी ना, यहाँ बहुत रोशनी है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमको शायद लगा, हमने तो हंस लिया, हमको लगा वो बच्चा तो बहुत छोटा है ना इसलिए उसको समझ में नहीं आया, लेकिन क्या हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम अपने जीवन में खुशी है, आनंद है, सफलता है, प्रगति है, पद है, ये सब कुछ कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर में। क्यों? क्योंकि वहां रोशनी है, वो चीजें हमें दिखाई देती है, इसलिए हमें लगता है कि ये प्राप्त कर लें, ये स्थान हमें प्राप्त हो जाए, ये संपत्ति प्राप्त हो जाए, ये पद प्राप्त हो जाए, तो हमें जीवन में संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, संपूर्ण रूप से खुशी प्राप्त होगी। लेकिन ये खुशी की, आनंद की, शांति की, सफलता की, प्रगति की चाबी गुम कहाँ हुई है? गुम कहाँ हुई है? कहाँ गुम हो गई? अंदर में। लेकिन अंदर में क्या है? अंधियारा है, अर्थात हम अपने आप को अभी तक जानते ही नहीं थे। और आज सुबह के लेसन में आपको प्रकाश मिला, आज राजयोग शिविर का पहला लेसन क्या था? किसकी पहचान? स्वयं की पहचान, जहां हमने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि मैं कौन। तो अब क्या जवाब आता है? मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। तो ये प्रश्न का जवाब तो तुरंत आ जाता है, और यहाँ आने के पहले भी आपको इस प्रश्न का जवाब पता था कि आप आत्मा हैं, नहीं पता तो था ही, लेकिन अंतर ये था कि सुबह से रात्रि तक जब हम अपने आप को याद करते हैं या अपने स्वयं की महसूसता को जागृत करते हैं, तो सुबह से रात तक हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं? अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखते हैं, उसमें स्थित रखते हैं। 24 घंटे में कितना समय आत्मिक स्मृति जागृत रहती है, क्या कहेंगे? नहीं तो हम जानते हैं लेकिन हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा अपने साथ संबंध इतना शक्तिशाली नहीं है। आज हम अपने साथ ही पराए हैं, हम अपने आप को ही नहीं जानते। नहीं, आज किसी को जानना माना उसका संपूर्ण परिचय जानना, उसके साथ हमारा संबंध अच्छा हो। लेकिन आज हमारा अपने साथ संबंध अगर हम चेक करें तो कैसा है? एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि एक जैसे परिवार में एक छोटे बच्चे की जिद थी कि मुझे एक छोटा सा पपी चाहिए, पेट चाहिए। तो उसके जन्मदिन पर माता पिता ने उसके लिए एक छोटा सा पपी ले आए, और धीरे धीरे वो छोटा सा पपी बड़ा होता गया, घर के सभी सदस्यों का वो प्यारा हो गया, और जो घर का मालिक था उसका भी वो बहुत प्यारा हो गया। अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक दिन वो घर का जो मालिक है वो उस डॉग को लेकर कहां बाहर जा रहा था, गाड़ी में जा रहा था। अब जैसे मैं बम्बई में सेवा केंद्र पर रहती हूँ तो वहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, आप भी जहाँ सिटीज में आते हैं तो धीरे धीरे हर सिटी में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ट्रैफिक में वो व्यक्ति फंस गया और थोड़ा गाड़ी आगे पीछे करते दूसरी गाड़ी आ गई और टक्कर लग गई। अब जैसे वो दूसरी गाड़ी टक्कर लग गई तो वो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो थोड़ा क्रोधित स्वभाव वाला था, तो तुरंत वो बाहर निकला। आप मन से विजुलाइज कर सकते हैं सीन कैसा होगा, विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसी सीन देखी है ना आपने। तो वो ड्राइवर ने आकर तुरंत जोर जोर से इनको बोलना शुरू किया, थोड़ा उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। अब ये जो मालिक है उनकी गाड़ी में उनका डॉग है, नहीं? तो जैसे उस डॉग ने देखा कि मेरे मालिक पर कोई जोर जोर से बोल रहा है, उसको आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके डॉग के मन में क्या आया होगा, उसने क्या करना शुरू किया होगा, उसने जोर से भौंकना शुरू किया। अब जो मालिक था उसने महसूस किया कि पहले तो मुझे इस बात को समझाना है, इस परिस्थिति जो आई है, सामने वाला व्यक्ति जो क्रोधित है उसको ठीक करना है। तो उसने तुरंत अपने डॉग को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, टॉमी क्वाइट, चुप रहो। टॉमी ने क्या किया होगा, एक क्षण में टॉमी ने सिर नीचे करके शांत हो गया। और फिर ये जो मालिक है ये उस सामने वाले व्यक्ति जो क्रोधित था उससे बातचीत करने लगा। लेकिन वो सामने वाले गाड़ी का जो चालक था वो तो बहुत क्रोधित स्वभाव वाला था, वो तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो एकदम आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, बहुत अपशब्द बोल रहा था। तो जो मालिक है उसके मन में भी अभी क्रोध जागृत हो गया, उसके मन में भी बहुत सारे नकारात्मक विचार जागृत हो गए। अब मालिक अंदर से जानता था कि इस परिस्थिति को अगर समझौता देना है तो क्या करना होगा, कैसे परिस्थिति को हैंडल करना होगा, शांति से। तो वो अपने मन को बार बार कह रहा था कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन उसका मन शांत हो सकता था, हो सकता है ऐसे शांत उस समय उस परिस्थिति में मन हमारा शांत होता है, होता है नहीं होता है। तो उस मालिक ने टॉमी को इंस्ट्रक्शन दिया तो टॉमी ने तो एक क्षण में क्या किया, सिर नीचे करके शांत हो गया। लेकिन अपने मन को जब उसने कहा शांत हो जाओ तो मन ने माना, टॉमी ने मान लिया, मन ने क्यों नहीं माना, टॉमी ने मान लिया। टॉमी को भी अच्छा नहीं लगा ना कि उसके मालिक को कोई इतना जोर जोर से बोल रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है। और टॉमी देख भी रहा था लेकिन एक बार भी टॉमी ने कुछ आवाज नहीं किया, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिल चुका था कि उसको शांत रहना है। लेकिन मन क्यों नहीं शांत हुआ, हम भी अपने मन को जब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि शांत हो जाओ, अब चुप रहो या शुभ सोचो, ये नेगेटिव नहीं सोचो, तो क्या हमारा मन हमारा इंस्ट्रक्शन मानता है, मानता है नहीं मानता है ना, क्यों? टॉमी ने मान लिया, हमारे मन ने क्यों नहीं माना जी, किसके कारण, अहंकार के कारण। अच्छा टॉमी ने क्यों मान लिया जी, वो कंट्रोल में कैसे आया, टॉमी मालिक के कंट्रोल में कैसे आया, वो तो पेट है ना, फिर क्यों कैसे कंट्रोल में आया, कैसे, उसके साथ मालिक ने क्या किया था, बचपन से लेकर उसके साथ क्या किया था, उसके साथ संबंध जोड़ा, उसके साथ प्यार से बात की, उसकी आवश्यकताओं को जाना, उस अनुसार उसको हर उसकी आवश्यकता को पूर्ण किया और उसके साथ ऐसा संबंध निभाया, उसको उस प्रकार से ट्रेन किया। तब समय पर जब वो मालिक ने टॉमी को कहा टॉमी क्वाइट, तो टॉमी ने क्या किया, एक सेकंड में वो इंस्ट्रक्शन माना, क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और उसको रिस्पेक्ट करता था, तो जो उसके मालिक ने कहा वो उसको करना है। तो वो संबंध टॉमी के साथ तो जोड़ लिया मालिक ने, लेकिन अपने मन के साथ हमने ऐसा संबंध जोड़ा है, हमने अपने मन को जाना है, हमने अपने मन की आवश्यकता को समझा है, अपने मन की आवश्यकता के अनुसार मन को वो शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, शुद्ध चिंतन दिया है। क्या मन हमारा मित्र है, ये प्रश्न पूछना जरूरी है ना? तो क्या हमने अपने मन के साथ ऐसा संबंध जोड़ा है कि हम अपने मन को जो कहें मन वो बात को प्यार से स्वीकार करे। और कई बार हम देखते हैं कि जब हम गुस्सा कर भी लेते हैं कुछ हम जोर से बोल भी देते हैं तो हमारा अंतर मन जो विवेक है वो हमें इशारा देता है, गाइड करता है। जब भी हमसे कोई ऐसी गलती होने वाली है, कुछ हम आवेश में बोलने वाले हैं, कुछ ऐसा गलत व्यवहार हमारा होने वाला है, तो हमारा अंतर मन हमें संकेत देता है, देता है, लेकिन हम उसकी बात मानते हैं। तो हम जब अपने मन को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो बात हमारी नहीं मानता, और हमारा अंतर मन हमें जो इंस्ट्रक्शन देता वो हम नहीं मानते। तो हमारा अपने साथ संबंध मजबूत बनाना है, इतना स्नेही बनाना है हमारा मन हमारा मित्र बन जाए। तो जिसका अपने साथ संबंध श्रेष्ठ हो उसके साथ फिर हरेक का संबंध श्रेष्ठ बन जाता है। तो सबसे पहला संबंध किसके साथ हमें अच्छा बनाना है, मधुर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, सबसे पहला मित्र किसको बनाना है, अपने आप को। अपने साथ समय बिताना है, किसके साथ भी मित्रता तब होती है जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, नहीं? एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं, नहीं? तभी तो संबंध हमारे मधुर बनते हैं। तो हम अपने साथ कितना समय बिताते हैं, सुबह से रात तक अपने साथ कितना समय बिताते हैं? आप सब तो बिजनेस में है, व्यापार में है, कंपनीज में वर्क करते हैं, तो आपका तो अपॉइंटमेंट डायरी होगा ना, बिजी होते हैं ना बिजनेसमैन, तो बिजी होते हैं, तो उस डायरी में आपका नाम रहता है नहीं? कितना टाइम अपने साथ बिताते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब हम समय ही नहीं बिताएंगे तो हमारा अपने साथ संबंध कैसे मजबूत हो सकता है, हम एक अपने आप को कैसे अपनी आवश्यकताओं को जान सकेंगे, अपने अंतर मन को कैसे महसूस होंगे। और संबंधों में मधुरता तब आती है जब हम एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है तो हम अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं, अपने साथ सारे दिन में कितना प्यार से बात करते हैं और कितना अपने मन को सारे दिन में उमंग उत्साह में लाते हैं, अपने आप के साथ कितनी समय वो बातचीत करते हैं जिससे हमारा मन शक्तिशाली हो, समर्थ हो, उमंग उत्साह में आए। जैसे कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो उनको पूछते हैं ना, आप कैसे हो, पूछते हैं। यहाँ भी आप एक दूसरे को मिलते हैं तो पूछते हैं, कोई आपको अगर जानकार कोई व्यक्ति मिल जाए तो पूछेंगे कि आप कैसे हो, बहुत दिन के बाद आप मिले हो, पूछते हैं। हाँ, हम अपने आप से पूछते हैं कि आप कैसे हो, अपने मन को पूछते हैं कि सारे दिन में हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर हम किसी और को पूछते भी, अपने कोई फ्रेंड को पूछते हैं, अपने कोई हमारे मित्र हैं, फैमिली के कोई एसोसिएट हैं, कंपनी में कोई हमारे सहयोगी हैं, व्यापार में हमारा कोई डीलर है, क्लाइंट है, उससे हम मिलते हैं, हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, अगर वो कहता है कि नहीं आज ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा मैं परेशान हूँ, थोड़ा मैं तनाव में हूँ, तो हम क्या करते हैं? उसका कारण पूछते हैं। और फिर उसके बाद अगर वो बताए कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा उसका टेंशन है, मैं परेशान हूँ, तो हम क्या करेंगे जी, उसको मदद करेंगे, नहीं? उसके उसको जो उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई सहयोग देंगे, उसको सांत्वना देंगे, उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, ऐसे कुछ उनके साथ विचारों के लेन देन करेंगे जिससे उसका मन क्या हो, हमारे मित्र का मन क्या हो, फिर से शक्तिशाली बन जाए, हिम्मत उसकी बढ़ जाए, नहीं कि हम उसको ऐसे ही परेशान छोड़ देंगे परेशान, नहीं, हमारे मन में उनके लिए वो शुभ भावना होगी कि कैसे उसका मन जो परेशान है उससे वो फिर से खुश हो जाए। तो हम सारे दिन में अपने आप को पूछते हैं कि हम कैसे हैं, और जब भी हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा हमारे मन में उदासी है, मन में थोड़ा किसी व्यक्ति के लिए क्रोध की भावना है, थोड़ा ईर्ष्या के वजह से हमारा मन थोड़ा सा लो फील कर रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, जब भी ऐसे नकारात्मक भावनाएं होती है, जब भी हमारा मन थोड़ा उदास होता है, दिल शिकस्त होता है, तब हम अपने आप को भी ऐसी अच्छी बातें सुनाते हैं जिससे फिर से हमारा मन भी उमंग उत्साह से भर जाए, जिससे फिर से हम भी हिम्मतवान बन जाए, जिससे फिर से हम भी आनंद में आ जाए। अपने आप से ऐसी बातें करते नहीं। तो यहाँ राजयोग के द्वारा पहला तो संबंध हम अपने आप के साथ सुंदर बनाते हैं, अपने आप के साथ ऐसा संबंध जोड़ते हैं जहाँ हम अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाएं, हम अपने सबसे अच्छे कोच बन जाएं, मेंटोर बन जाएं। सारा दिन यहाँ हमको राजयोग के द्वारा ईश्वर ऐसी शिक्षा देता है कि सारा दिन हम अपने आप को श्रेष्ठ विचार देते जाएं। रोज यहाँ परमात्मा हमको जो शिक्षाएं देता है उसमें रोज सवेरे एक घंटे के लिए हमें यहाँ राजयोग के आधार पर जो शिक्षा मिलती उस आध्यात्मिक सेल्फ स्टडी को आध्यात्मिक शब्दों में मुरली कहा जाता, जिसमें हमें बहुत सुंदर विचार मिलते कि कैसे हम अपने मन को सारा दिन समर्थ रखें, अपने मन को सारा दिन खुश रखें, अपने मन को सारा दिन शक्तिशाली विचारों से भरपूर रखें। जब हमारा अपने साथ संबंध सुंदर होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारे दिन में जो बातें हमारे सामने आती है उसको पार करना, उसका समाधान करना सहज हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि मुख्य बात है कि अपने साथ संबंध श्रेष्ठ बनाना, क्योंकि हमारा स्वयं जो है वो वास्तव में स्व जो है वो अंतर में, एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जैसे एक व्हील होता है, तो व्हील का जो बीच का हिस्सा होता है धुरी, तो वो धुरी जो है वो आधार है वो सारे चाक का, व्हील का। धुरी की विशेषता क्या होती है, गांव में हम देखते हैं बुलक काट होता है, बैलगाड़ी होती है ना, तो उसमें बीच में जो धुरी होती है, धुरी समझते हैं ना, धुरी जो हम कहेंगे हब जो है बीच में, तो वो जो धुरी है उसकी विशेषता क्या होती है व्हील में, व्हील उस धुरी की विशेषता क्या होती है, उसके आसपास वो सारे चाक होता है, लेकिन धुरी की विशेषता क्या होती, वो जो धातु का बना हुआ है वो कैसा होना चाहिए, वो धातु बहुत मजबूत और स्थिर। अगर वो धुरी हिलना शुरू करे तो वो कमजोर हो जाए, और वो हिलना शुरू करे तो क्या होगा, वो सारी चाक क्या होगी, उसकी गति पहले तो क्या होगी, धीमी हो जाएगी, और अगर वो हिलना और भी हो कंटिन्यू होगा तो क्या होगा, चाक गिर जाएगा। तो जितना हमारा अपने साथ संबंध शक्तिशाली, जितना हम स्वयं समर्थ, जितना हम स्वयं अपने मनोबल से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर, स्नेह की शक्ति से भरपूर, उतना क्या होगा, हर प्रकार के जो हमारी जिम्मेवारी है, हर क्षेत्र में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम बेस्ट कर सकेंगे। लेकिन जब हमारी स्वयं के साथ संबंध में कुछ कमी है, कहा ना कहा हम अपने इतने अच्छे मित्र नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में हमें उदास कर लेती हैं, दिल शिकस्त कर लेती है, अपसेट कर लेती हैं, तो क्या है, धुरी जो है वो हिलना शुरू हो जाती है, हमारी मन की स्थिति हर बाह्य परिस्थिति के प्रभाव में आ जाती है। तो क्या होता, जैसे हमारा मन उदास हो जाता, अपसेट हम फील करते हैं, लो फील करते हैं, धुरी हिलना शुरू करती, तो क्या होता, फिर जीवन में हमारी जो गति है, जो जिस प्रकार की हम हर परिस्थिति को समाधान देते जाते हैं, वो गति धीमी हो जाती। जीवन में हर क्षेत्र में जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है, उस पर उसका असर पड़ता है। और अगर ये हमारा मन बहुत काल तक ऐसा हलचल में रहे, अपसेट रहे, दुखी रहे, तो फिर कहीं ना कहीं असंतुलन हो जाता है। तो पहला संबंध हमें किसके साथ मजबूत बनाना है, अपने साथ, हमें अपना बहुत अच्छा मित्र बनना है, तो अपने साथ टाइम बिताना है। आजकल हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अकेला होता है, जब भी आप अकेले होते हैं तो क्या होता है, तुरंत हम क्या करते हैं, जब कोई नहीं है, कुछ काम नहीं है तो क्या करते हैं, तुरंत फोन में किसी से बात करना शुरू करते हैं, नहीं, व्हाट्सएप देखना शुरू करते हैं, नहीं, टीवी ऑन कर लेते हैं, नहीं, हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, अपने साथ अकेला नहीं रहना चाहते, क्यों, क्योंकि हम अपनी कंपनी नहीं एंजॉय करते। अगर कोई आपको कहे कि आपकी कंपनी मैं एंजॉय नहीं करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं। तो जब हम अकेला नहीं रहना चाहते, हम अपने आप में अकेले होने में खुश नहीं रहते हैं, माना हम अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करना चाहते, अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि हमने अपने साथ वो संबंध इतना नहीं अच्छा जोड़ा है, अपने आप को इतना अच्छा नहीं बनाया है, अपने आप के प्रति वो रिस्पेक्ट और स्नेह नहीं है। तो हमारा अपने में स्नेह, अपने में रिस्पेक्ट कब बढ़ता है? जब हम अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ बनाते जाते हैं। और जब हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है तो हमारे ऊपर जो काम हमें करना है, कहते हैं सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोजेक्ट जो है, जो सबसे इंजॉयबल प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा काम आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पास अथॉरिटी है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? स्वयं। तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, उसमें सबसे ज्यादा मदद हमें किससे मिलती है? जब हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, औरों से तो हमें जरूर शुभकामनाएं मिलेगी, लेकिन शक्ति हमें किससे मिल सकती है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में, अपने आप को और मनोबल से भरपूर करने में, अपने आप को और गुणवान बनाने में? किससे मदद मिल सकती है, शक्ति किससे मिल सकती है? आत्मिक गुण और शक्तियों का स्रोत कौन है? परमात्मा। तो सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के साथ संबंध, और दूसरा ईश्वर के साथ आपका संबंध। ईश्वर हमारे साथ जो उसका संबंध है, उसमें कितनी समीपता है, कितना स्नेह है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि भगवान को मानने वाले हम बने हैं, लेकिन भगवान की मानते हैं? भगवान को मानना और भगवान की मानना, उसमें अंतर है ना। तो भगवान को तो हम सब मानते हैं, भगवान की हर बात मानते हैं, क्या कहेंगे, मानते हैं, लक्ष्य रखते हैं, नहीं? क्योंकि हम जानते ही नहीं उसको, तो उसकी बातों को हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ राजयोग के द्वारा हम परमात्मा को भी पहचानते हैं। जब हम स्वयं को जानते हैं, तो स्वयं को जानने से हमारे परिवार को, हमारे कारोबार को और हमारे स्वास्थ्य को, इन सभी स्थानों को हम बहुत सुंदर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जहाँ हमारे स्वयं के साथ संबंध श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ संबंधों में स्नेह की लेन देन सहज हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है। आज सुबह गिरीश भाई आपको ये बता रहे थे, बहुत अच्छी बात, कि हमें किसी से भी फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अपेक्षाएं नहीं होती है, लेकिन हम एक दूसरे को स्नेह देना, सहयोग देना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हम स्वयं में भरपूर हैं। और फिर हम देखते हैं इसके लिए हमारा परमात्मा के साथ संबंध बहुत सुंदर होना चाहिए। लेकिन जैसे हमने कहा, किसी के साथ संबंध तब श्रेष्ठ होता है जब हम उसके साथ समय बिताते हैं। तो हम अपने आप से पूछें कि सुबह से लेकर रात्रि तक हम ईश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं? सच बोलना, ईश्वर के साथ कितना समय संबंध बिताते, समय बिताते, कितना समय? 1 आवर। उस 1 घंटे में भी हम ईश्वर के साथ रहते हैं या कारोबार में मन बुद्धि रहती है? बहुत सुंदर, किसी ने कहा कि हाथ से तो माला फेर रहे हैं, लेकिन मन का मणका तो कहीं और ही घूम रहा है, नहीं? तो मन बुद्धि से ईश्वर के साथ उस 1 घंटे में कितने पल हम रहते हैं? 10 मिनट, नहीं? तो सारे दिन में 24 घंटे में हम कितना समय बिताते हैं, और उस संबंध का भी आधार क्या है, नहीं? संबंध का आधार क्या होता है? कई बार हम देखते हैं कि हम उसको याद किस कारण से करते हैं, एक तो जब दुख होता है तब कारण से याद करते हैं, या तो थोड़ा सा भय के कारण याद करते हैं, नहीं? कि अगर ईश्वर को याद हमने नहीं किया, रोज हमने प्रार्थना नहीं की, रोज पूजा नहीं की, रोज मंदिर या मस्जिद या जो भी हम आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, वहां हमने ईश्वर के प्रति थोड़ा समय नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, कोई श्राप लग जाएगा, नहीं? तो ईश्वर के साथ संबंध का भी आधार क्या है? परमात्मा के साथ संबंध का आधार है प्रेम। आत्मा का जितना परमात्मा से प्रेम है, तो वहां सहज याद हो जाती है। तो जहां हम देखते हैं स्नेह है, वहां संयोग प्राप्त होता है। स्वतः ही हमारा ईश्वर के साथ वो समीपता के आधार से हम परमात्मा के हर गुण और शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति 100% निश्चय प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर के प्रति हमारा स्नेह जरूर है, लेकिन ईश्वर में हमारा निश्चय कितना है, संबंध में हम देखते हैं कि निश्चय, ट्रस्ट, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है आपसी विश्वास, इंपॉर्टेंट है संबंधों में नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को पूछें कि ईश्वर में भी हमारा विश्वास कितना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने कहा सुना था कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत बर्फीला स्थान था और वहाँ वो माउंटेन क्लाइंब कर रहा था, नहीं पहाड़ चढ़ रहा था, और वो वैसे तो बहुत अनुभवी था लेकिन वहाँ उस समय बहुत बर्फ पड़ रही थी, तो उसके कारण अंधेरे का समय था और वो जो रस्सी से धीरे धीरे चल रहा था वहाँ वो रस्सी थोड़ा छूट गई, तो इसलिए अंधेरा का समय था उसको पता नहीं पड़ा तो नीचे वो गिर रहा था और कहीं आकर वो अटक गया और बर्फ बहुत पड़ रही थी, बहुत ठंडी थी। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था तो वो ईश्वर को पुकारने लगा, हे ईश्वर तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बहुत सच्चे मन से ईश्वर को याद तो कर रहा था और घबरा भी बहुत रहा था, तो उसको अंतर मन से ईश्वर के साथ संबंध से उसको एक प्रेरणा मिली कि ईश्वर उसे कह रहा है कि जो रस्सी पर तुम लटक रहे हो उसको काट दो। अब उसको लगा कि ईश्वर तो कह रहा है कि काट दो, अब यही तो मेरा आधार है, मैं तो गिर जाऊंगा, कट जाऊंगा। तो उसके मन में इतना भय आया कि वो ईश्वर को पुकार भी रहा है लेकिन ईश्वर की आवाज सुनकर वो मन में अविश्वास है, पता नहीं क्या होगा, मैं काट कैसे सकता हूँ। अब रात्रि पूरी हो गई, दूसरे दिन सुबह हो गई, तो वहाँ आसपास के गांव वाले जब आए तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति की मौत हो गई है, वहाँ वो लटक रहा है एक पेड़ पर, पहाड़ पर वो पेड़ था जिस पर वो लटक रहा था, और कितना जमीन से दूरी थी, सिर्फ 3 मीटर। तो हम देखते हैं कि परमात्मा में भी अटूट विश्वास कि जो कहे उसमें कोई ना कोई मुझ आत्मा का कल्याण है ही, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, त्रिकाल दर्शी है, वो मुझ आत्मा अर्थात उसके बच्चे का क्या कल्याण है इसमें, इस परिस्थिति में वो जानता है। तो जब ईश्वर माप कल्याणकारी है तो हमारा भाग्य तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही, हमारा तो हर परिस्थिति में कल्याण ही कल्याण है। तो वो परमात्मा के साथ भी स्नेह का संबंध और अटूट विश्वास, जहाँ अटूट विश्वास है वहाँ परमात्मा की हर कदम पर मदद मिलती है। आप सभी को भी ईश्वर की मदद का अनुभव है ना, कई ईश्वर के अनुभव है ना आपको सबको। हम सब अपने आप से अगर पूछें तो हमारे दिल में कई ऐसे अनुभव के मोती समाये हुए हैं जहाँ हमने परमात्मा से वो मदद का अनुभव किया है समय पर। लेकिन वो समय पर ही मदद क्यों हम प्राप्त करें, हर कदम पर ही हम क्यों नहीं ईश्वर को साथ लेकर हर परिस्थिति में, हर क्षण में, हर सेकंड, हर श्वास में उसको साथ लेकर उसके साथ चलते रहें, तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से आनंदमय हो। तो जहाँ ईश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत हो जाता है, जहाँ ईश्वर की छत्र छाया का हम अनुभव करते हैं, तो हर परिस्थिति और हर संबंध में हमारी स्वतः ही प्रगति और खुशी और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध कितना श्रेष्ठ है, सुबह से रात्रि तक कितना हम दिल से उसको याद करते हैं। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव, अर्थात मन को मुझे मेरे में लगाओ। तो यहाँ राज योग के द्वारा हम ये बहुत सुंदर एक विधि सीखते हैं, 2 मिनट के लिए जब हम परमात्मा की याद में बैठे मेडिटेशन में, तो कितना सहज मन बुद्धि से हम उसके पास पहुंच जाएं, और फिर वो स्नेह की वार्तालाप एक दूसरे के साथ परमात्मा से वो शक्तियों का अनुभव करें। तो यहाँ राजयोग की विधि के द्वारा आपको ये बहुत सुंदर और सहज रूप में एक अनुभव हो जाएगा, और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे आपको महसूस होगा कि ईश्वर जैसे आपका बन गया, परमात्म अधिकारी हम बन जाएंगे। जैसे कोई हमारा अपना होता है तो हम अधिकार से उसको याद भी करते हैं, अधिकार से उससे जो भी सहयोग प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा भी हमारा हो जाता, हम बालक, बालक तो उसके भी मालिक बन जाते। तो यहाँ कल आपको राजयोग शिविर में सुबह को परमात्मा का परिचय प्राप्त हो जाएगा और लास्ट में आपको तीसरे दिन ये राजयोग की बहुत सुंदर विधि भी प्राप्त हो जाएगी। और जैसे जैसे आप ये राजयोग का अभ्यास करेंगे और ईश्वर के साथ उसमें के संबंध में जोड़ेंगे, जितना जितना हम प्यार से और स्वच्छ मन से, जहाँ कहा जाता है कि जहाँ भी सत्यता है वहाँ परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना सहज हो जाता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो वो अनुभव जो समीपता का होता है तो हर प्रकार की प्राप्ति, हर प्रकार के गुण और शक्ति और सहयोग हमें प्राप्त परमात्मा से सहज होता है। एक छोटी सी कहानी मैं लास्ट में आपको सुनाना चाहूंगी कि फिर से एक बच्चा ही था जो एक दुकान पर अपने माता के साथ गया। माँ को कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीजें घर के लिए लेनी थी, तो दुकान पर बच्चा भी साथ में गया। अब बच्चे का ध्यान दुकान पर कहाँ चला जाएगा, दुकान में आगे बहुत सारे टॉफीज और स्वीट्स आदि बॉटल्स में पड़ी थी, तो माँ तो सब खरीदारी कर रही थी, बच्चे का ध्यान कहाँ था, वो बहुत सारी स्वीट्स थी बॉटल में पड़ी थी। तो जो दुकान शॉपकीपर थे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे का ध्यान वहाँ है, तो कहा बेटे, उसने खोल दिया वो बॉटल और कहा बेटे आपको टॉफी लेनी आप ले लो। तो बच्चा अपनी माँ को बार बार देख रहा था, तो दुकानदार समझा उसने कि भाई बच्चा नहीं लेना चाहता है क्योंकि माँ उसको इजाजत दे तब वो ले। तो माँ खरीदारी कर रही थी, थोड़ा बिजी थी, फिर बार बार वो दुकानदार उसको कहे बच्चे को कि बेटा ले लो आप, ले लो एक टॉफी ले लो। तो बार बार वो अपनी माँ की तरफ देखे। फिर उसके बाद जब उसकी माँ आई तो दुकानदार ने उसको कहा कि देखो मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि टॉफी लो लेकिन वो ले नहीं रहा, आप उसको कहो तब वो लेगा। तो माँ ने भी कहा कि बेटा टॉफी ले लो। तो वो फिर से माँ को देखा, फिर से उसने दुकानदार को देखा, बच्चा छोटा था, तो फिर दुकानदार को लगा कि बच्चा थोड़ा शर्मा रहा है, कहा कोई बात नहीं मैं उसको दे देता हूँ। तो दुकानदार ने अपने हाथ से उसको टॉफी दे दी और फिर बच्चा घर चला गया, बहुत खुश हो गया, माँ के साथ घर पहुंच गया। तो बच्चा बहुत छोटा था, फिर भी उसकी माँ को लगा कि मैंने भी बच्चे को बोला ले लो तो बच्चा क्यों नहीं ले रहा था। तो उसने प्यार से अपने बच्चे को पूछा कि बेटा मैं आपको बोल रही थी तो आप ले लेते थे, अंकल तो इतने अच्छे हैं, अंकल ने सामने से कहा ना टॉफी ले लो, तो आपको शर्माना नहीं चाहिए, आपको ले लेना चाहिए था। तो कहा मम्मी अंकल ने कहा मुझे उस बॉटल में से टॉफी लेने के लिए, लेकिन मेरा हाथ तो बहुत छोटा है, अंकल का हाथ तो बहुत बड़ा है। तो उसी रूप से हम अपने जीवन में जो कुछ अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने जो भी हमारे पास शक्ति उसके आधार पर जो प्राप्त जितना भी करना चाहे वो बहुत छोटा ही होगा, लेकिन जब हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, जब वो हमारा हो जाता है, जब वो हमारा बिजनेस पार्टनर हो जाता है, जब वो हमारा पिता बन जाता है, हमारा जीवन साथी बन जाता है, हमारा हर कदम में सहयोगी बन जाता है, तो उसका हाथ बहुत बड़ा है। तो जो कार्य हमें करना है, जो हमारे सामने परिस्थिति है, उसका समाधान सहज ही हो जाना है। तो ईश्वर को अपना बनाना ये बहुत सुंदर कला हम यहाँ राजयोग से सीखते हैं, और आप जरूर ऐसी ये विशेष राजयोग की कला यहाँ से सीख कर जाएंगे, ताकि आप अपने जीवन में सदा ही उस ईश्वर परमात्मा से, जिसको हम बहुत प्यार से यहाँ शिव बाबा कहते हैं, कल आप जब उनका परिचय प्राप्त करेंगे तब आप उसका रहस्य भी जानेंगे कि हम इनको शिव परमात्मा पिता को शिव बाबा क्यों कहते हैं। या कई बार आप यहाँ जो समर्पित भाई बहने हैं या जो सेंटर पर बहने हैं उनके मुख से आप बाबा शब्द सुनते हैं बहुत प्यार से, तो ये बाबा शब्द उस परमात्मा पिता के लिए है जो हमारा बन जाता है। तो जैसे हम अपने लौकिक पिता को, वो भले किस भी पद पर हो, बहुत बड़ा व्यापारी हो, लेकिन उसको जब हम अपने प्यार से बुलाएंगे तो हम किस रूप से बुलाएंगे, पिता के रूप में ना, डैडी के रूप में ना, बाबा के रूप में बुलाएंगे। तो यहाँ परमात्मा सर्वशक्तिवान है, जिसको हम पति पावन कहते हैं, विश्व का पालनहार कहते हैं, लेकिन वो उसके साथ जब हम ऐसा सुंदर संबंध जोड़ लेते हैं, आत्मिक स्मृति से उसको बहुत प्यार से याद करते हैं परिचय सहित, तो वो हमारा बन जाता है, और उस अधिकार से फिर हम उसको शिव बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, और फिर हम उसको बाबा शब्द से प्यार से याद करते हैं, जहाँ फिर सभी हम जब उसको याद करते हैं तो वो हमारा बन जाता है ना, तो अपने पन के अधिकार से फिर यहाँ मेरा बाबा कहते हैं। तो जब परमात्मा से वो संबंध आपका जुड़ गया, जो वो आपका बन गया, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर के साथ मन बुद्धि की तार जोड़ने से उसकी सर्व शक्तियां, उसके सर्व गुण आपको प्राप्त हो जाते हैं। जब आपकी बुद्धि उस बुद्धिवानी की बुद्धि से जुड़ जाए तो क्या होगा, हर कदम पर जो आपको निर्णय लेना हो वो कैसा निर्णय होगा, एक्यूरेट, हर बार हर निर्णय आपका राइट होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि उस बुद्धिवानों की बुद्धि से जुड़ी हुई है। तो जरूर यहाँ आप सीख कर जाएंगे कि कैसे हमें अपना भी मित्र बनना है, अपने साथ भी संबंध सुंदर जोड़ना है, और परमात्मा के साथ भी ऐसा सुंदर संबंध जोड़ना है वो सदा काल के लिए हमारा बन जाता है और हम उसके बन जाते हैं। और इस दोनों ही सुंदर संबंधों के आधार से जीवन का हर संबंध सुखदायी बन जाएगा, क्योंकि हर संबंध में क्या होगा, आप देना शुरू करेंगे अनकंडीशनल रूप में। आप हरेक आत्मा को जिससे भी संपर्क में आते हैं, परिवार में या कारोबार में, उसको स्नेह सहयोग देना शुरू करते हैं। जैसे देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप स्नेह देंगे तो क्या होगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये नियम है, देना ही लेना बन जाएगा। तो अपने साथ संबंध और ईश्वर के साथ संबंध, ये दोनों ही हमारे बहुत मजबूत बनाना है, और वो हम राज्यों की एक सुंदर जीवन जीने की कला यहाँ सीखते हैं। हमारे पास यहाँ सेवा में भी बहुत सारे भाई बहन हैं, उनके भी आप अनुभव जब आप उनसे मिलते हैं आप सुनते रहेंगे कि कैसे उन्होंने भी अपने गृहस्थ में रहते, अपने व्यापार में रहते, अपनी हर प्रकार की जिम्मेवारी को निभाते हुए ईश्वर को अपना बना लिया है, अपने हर मन के बोझ ईश्वर को दे दिया है, शिव बाबा को दे दिया है, और कैसे परमात्मा पिता बनकर, सखा बनकर, साथी बनकर हर कदम में हमें मदद कर रहा है, हर कदम में हमें प्राप्ति की अनुभूति करा रहा है। तो ऐसे बहुत सुंदर अनुभव भी आपको आगे कार्यक्रमों में प्राप्त होते जाएंगे। अभी हम कुछ क्षणों के लिए उस परमात्मा पिता को बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे। कुछ क्षणों के लिए मन बुद्धि को हम बाहर के सभी आवाज के वातावरण से समेट लेते हैं। इस शांतिवन के सुंदर हॉल में रिलैक्स होकर हम बैठे हैं। अपने अंतर के चक्षु द्वारा, मन की आंखों द्वारा हम अपने आप को देख रहे हैं। प्रकृति के बीच वो चैतन्य सितारा, उस सूक्ष्म शक्ति को हम महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर की मालिक, एक चैतन्य सत्ता हूं। रूप भी ज्योतिर्बिंदु हूं। मन की आंखों द्वारा मैं अपने दिव्य स्वरूप को निहार रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस शांति की अनुभूति में मैं अपने पिता शांति के सागर को याद कर रही हूं। कुछ क्षणों के लिए उस परमात्म मिलन का आनंद लेना चाहती हूं। मैं आत्मा, छोटा सा बिंदु, अपने मन की आंखों के द्वारा मैं इस अंतर यात्रा को देख रही हूं। ये छोटा सा सितारा इस शरीर से निकल इस सृष्टि रूपी रंगमंच, इस पृथ्वी से भी पार सूर्य चांद सितारों से पार, अंतरिक्ष से भी पार, उस ज्योति के धाम में मैं आत्मा पहुंच जाती हूं। मन की आंखों के द्वारा शांति धाम को देख रही हूं। सुनहरी लाल प्रकाश का महत्त्व है, मुझ आत्मा के समान यहां अनेक सूक्ष्म सितारे चमक रहे हैं और उनके बीच उस परम ज्योति को भी मैं देख रही हूं, जिसकी अलौकिक आभा कितनी सुंदर है। परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, जो शांति का सागर है, जिसके समीप पहुंचते ही मैं आत्मा भी शांति की शक्ति से भरपूर हो जाती हूँ। परमात्मा पिता का सानिध्य कितना सुखदायी है। उनके समीप पहुंचते ही मेरा मन सुखों से भरपूर हो जाता है। परमात्मा प्यार का अनुभव कितना मीठा है। वो प्रेम का सागर है, जिनका प्यार कितना शुद्ध, कितना विशाल है, निस्वार्थ है, निर्मल है। ईश्वर के प्रेम से मेरा हृदय भरपूर हो रहा है। प्यार के सागर की संतान मैं भी प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। इस जीवन के हर संबंध में शुद्ध प्रेम, शुभ भावना, शुभ कामना देने के योग्य परमात्मा मुझे बना रहा है। क्षमा का सागर मुझे क्षमा की शक्ति से भरपूर कर रहा है। मैं हर संबंध में क्षमा कर शुभ भावना से संबंधों को मजबूत बनाने की शक्ति भर रहा है। परमात्मा स्नेह मुझे सुखदायी बना रहा है। अपने परिवार के सदस्यों को हम याद करते हैं, उनको भी आत्मा के रूप में देख रहे हैं। उन आत्माओं को भी शुद्ध संकल्पों द्वारा शुभ भावना और स्नेह के प्रकंपन भेज रहे हैं। व्यापार और उद्योग में जिन लोगों के साथ हम लेन देन करते हैं, उनको भी याद कर रहे हैं। उनकी ब्रुकुटी में भी उस आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। उनको भी अपनी शुभ भावनाओं द्वारा, शुभ संकल्पों द्वारा स्नेह, शांति, खुशी के प्रकंपन भेज रहे हैं। हमारा मन हर एक के प्रति आत्मिक स्नेह और शुभ भावनाओं से भरपूर हो रहा है। स्नेह स्वरूप बनते जा रहे हैं। इसी शुभ भावनाओं से भरपूर स्थिति में अब हम फिर से अपने आप को इस स्थूल लोक में, इस कर्म क्षेत्र में अपने मन बुद्धि को फिर से यहाँ हम इस हॉल में ले आते हैं। प्रकृति के बीच मैं आत्मा अपने आप को विराजमान महसूस करती हूँ। परमात्म स्नेह से भरपूर हरेक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर। ओम शांति शांति।